यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14/7/92 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा मथाणिया में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
अपना 12वां अध्याय हुआ जो भक्ति योग का है, 13वां अध्याय जो ज्ञान योग का है, क्षेत्र क्षेत्र की विभाग है उसमें, क्षेत्र और क्षेत्र की। पहला प्रकरण उसमें 18 श्लोकों का है जिसमें क्षेत्र और क्षेत्र का विवेचन है और ज्ञान का विवेचन है, ज्ञेय का भी वर्णन है। इसका उपसंहार 18वें श्लोक में किया है। उसके बाद प्रकृति और पुरुष का विवेचन है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ये एक छोटा है, प्रकृति पुरुष व्यापक है। क्षेत्र नाम इस शरीर का है, इसको जानने वाले का क्षेत्रज्ञ है नाम, और प्रकृति नाम परमात्मा की समष्टि सृष्टि का है, और उसका पुरुष नाम परमात्मा का है। उसका वर्णन हुआ इसमें पहले प्रकरण में, भक्ति साध है ऐसा ज्ञान का है, साथ में भक्ति है, और दूसरा जो जिसमें ज्ञानी प्रधान है ऐसा प्रकरण है, ये पूरा हुआ। अब इसके बाद 14वां अध्याय चलता है, तो 14वां अध्याय उसमें पहला प्रकरण 4 श्लोकों का है और दूसरा प्रकरण 14 श्लोकों का है और तीसरा प्रकरण 6-7 श्लोकों का है। अभी 18 हुआ है और 18 के बाद 2 और 6 8 है, ऐसा ये प्रकरण है। इसको ठीक मनन करें। एक बात एक मन में आई है कि ये 18वें अध्याय तक जो हम कहने का विचार कर रहे हैं, 12 और 2, 13 2 अध्याय कहे हैं, ये आप ध्यानपूर्वक सुने। जो कोई भाई बहन गीता का अभ्यास करना चाहते हैं, गीता के गहरे अर्थ को समझना चाहते हैं, उनको चाहिए कि ये मेरी बातें सुनने के बाद भाई भाई लोग 5, 7, 10, 15, 20 इकट्ठे होकर आपस में पर्व में विचार करें। ऐसे ही बहनों जिनके याद है गीता जी, अभ्यास है पूरा, संख्या सहित याद है, ऐसी कई लड़कियों को गीता याद है, वे और 5, 7, 10, 15, 20 दूसरी बहन जो ठीक गीता का अभ्यास करना चाहते हैं, वे मिलकर के दिन में ऐसा एक समय निकाले, वे स्त्रियां एक तरफ बैठे अपने अपने मकान में, भाई लोग एक तरफ अलग अलग, वे भी आपस में गीता का विचार करें और ये आज विषय हुआ ऐसा विवेचन करें, तो गीता का अभ्यास इस चातुर्मास में बहुत अच्छा हो सकता है। 2 महीना है तो 2 महीनों में अच्छा अभ्यास हो जाए गीता में, क्या क्या चीज है कैसी है, और कंठस्थ कर लेना चाहिए। कंठस्थ है उनके तो बढ़िया बात है कि विषयों को ठीक से समझ लें, और जिसके कंठस्थ नहीं है वे गीता कंठस्थ कर लें, याद कर लें, और वो भी याद संख्या सहित हो तो बहुत ही बढ़िया बात। संख्या साथ याद करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है। ये जो विषय निर्देश करते हैं पहले के इस अध्याय में इतने इतने प्रकरण है, ऐसे ऐसे श्लोक हैं, इन श्लोकों में इन इन बातों का वर्णन है, इतना संक्षेप से याद होने पर ग्रंथ का आशय खुल जाता है, उस अध्याय का मतलब मर्म आ जाता है हाथ में। इसके बाद साधक सिंधी में नहीं पढ़ो, तत्व विवेचनी पढ़ो, जो दोनों टीकाएं गीता प्रेस से मिलती है, ये और पुस्तकों से सस्ती है, और जितने छापा खाना है उनमें सस्ती पुस्तकें बहुत कम जगह मिलती है, गीता प्रेस में सस्ती मिलती है। तो वे दो टीकाएं तत्व विवेचनी है, साधक संजीवनी है, ये सस्ती मिलती है। अभी यहाँ पुस्तक आई हुई नहीं, आने से मिल जाएगी, और पहले बहुत भाई बहनों के पास है, उनसे विचार करो। तो पहले इन विषयों को ठीक याद कर लें, फिर गीता में गहरे उतर के विचार करो तो गीता का अच्छा मन हो जाएगा, और गीता के अनुसार जीवन बनाने से कल्याण हो जाता है। एक बात और याद आ गई, शास्त्रों में जितना वर्णन है वो कल्याण के लिए है। जिसमें दर्शन शास्त्र है वे छह है, एक सांख्य योग है, एक कर्म योग है, जिसमें संख वेदांत दर्शन है एक, और एक न्याय है वैशेषिक है, ऐसे न्याय विशेष दो दर्शन है, एक योग और सांख्य दो दर्शन है, और एक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दो दर्शन, ऐसे छह दर्शन है। छह दर्शनों के तीन विभाग है, सांख्य और योग ये एक विभाग है, एक श्री से मिलते जुलते हैं, मतभेद है आपस में, ऐसे न्याय और वैशेषिक दर्शन है, उनका विषय भी मिलता हुआ है, परंतु ये दर्शन ऋषियों के बनाए हुए हैं वेद के आधार पर, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये मीमांसा है, मानो वेद के जो मंत्र है उन मंत्रों का क्या तात्पर्य है वो तात्पर्य खोलने के लिए तो ये मीमांसा है, ये स्वयं दर्शन ऐसे नहीं है, उन सूत्रों में श्रुतियों के ऊपर बनाए हुए सूत्र है, उनसे चलते हैं। तो ऐसे छह दर्शन है, इन दर्शनों में जीव के कल्याण का मार्ग बताया गया है, उद्धार का मार्ग बताया गया है। इसमें फिर एक बात और है, वो है प्रस्थान त्रय। हमारे यहाँ परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलने के लिए बड़े राजमार्ग हैं, उनको प्रस्थान कहते हैं, बड़े सीधे बड़े बड़े मार्ग हैं, इन मार्ग में चलो। तो वो प्रस्थान त्रय बोले, तीन प्रस्थान है, तीन बड़े बड़े मार्ग हैं। तो तीन मार्गों में एक मार्ग उपनिषदों का है, श्रुतियों का, वेदों का मार्ग, वो श्रुतियों का है जिसमें 10-11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। उपनिषदों के बहुत भेद है, उपनिषद उस विभाग का नाम है जो वेद में खास कल्याण करने की बातें लिखी, वो वेद का विभाग, उसका नाम है उपनिषद। तो उपनिषदों में भी 10 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। तो एक उपनिषदों का विभाग है मंत्र विभाग, कल्याण करने के लिए ये एक बड़ा प्रस्थान है। इसमें दूसरा प्रस्थान है वेदांत दर्शन, ब्रह्म सूत्र, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा का ब्रह्म सूत्र। तो ये प्रस्थान है विद्वानों का, दार्शनिक विद्वान होते हैं बड़े ऊंचे दर्जे के, उन लोगों के लिए ऐसा दार्शनिक प्रस्थान है ब्रह्म सूत्रों का। तो ब्रह्म सूत्रों में खूब परमात्मा तत्व का विवेचन हुआ है, बड़ा गहरा अध्ययन है, गहरा शास्त्र है। और तीसरा प्रस्थान है भगवद गीता। तो गीता ऐसे एक इतिहास शास्त्र जो महाभारत है उसके अंतर्गत आती है गीता। तो ये श्लोक है, गीता के प्रस्थान में है श्लोकों का वर्णन, और सूत्र प्रस्थान है ब्रह्म सूत्र, उसमें सूत्रों का वर्णन, और वैदिक प्रस्थान में उसमें है वेद के मंत्रों का वर्णन। वे मंत्र है, वो सूत्र है, ये श्लोक है। श्लोक सबसे सरल होते हैं, सीधे होते हैं, इस बार से श्लोकों में कहा है। तो गीता का संस्कृत बड़ा सरल है, ये प्रस्थान त्रय है तीन। हमारे यहाँ शास्त्रों में और जितने जितने विद्वान उन्होंने जो लिखा है उनके मत है अलग अलग। वैष्णव मत है, शाक्त मत है, शैव मत है, गाणपत है, सौर है, पांच ईश्वर कोटि के देवता माने जाते हैं। एक भगवान शंकर, एक भगवान की शक्ति, एक भगवान के पुत्र गणेश, ये तीन है देवता ईश्वर कोटि के, और एक विष्णु भगवान और एक सूर्य, ये देव देवता है ईश्वर कोटि के। ईश्वर कोटि का मतलब ये ईश्वर है, एक ईश्वर होगा चार देवता होंगे, विष्णु भगवान के जहाँ मंदिर होगा विष्णु भगवान साक्षात ईश्वर, और शंकर शक्ति गणेश और सूर्य देवता होंगे। जहाँ भगवान शंकर का मत होगा वहाँ शैव मतों में शंकर तो मुख्य मंदिर रहेगा, बीच में चार और चार मंदिर रहेंगे जो कि देवता रूप से है। तो इस रूप से शंकर का आगमन होगा तो ये चार मंदिर होंगे। ऐसे ही शाक्त शक्ति की उपासना करने वाले हैं, उनके देवी शक्ति की मुख्यता है, वो शक्ति ही ईश्वर है, वो ईश्वर रूप से हुई, और विष्णु सूर्य और शंकर और गणेश ये देवता रूप से होंगे, वो शाक्त मत कहलाता है। ऐसे ही गाणपत है, गणेश जी को ईश्वर मानने वाले, वहाँ गणेश जी ईश्वर रूप है, दूसरे चार देवता देवता रूप है, पहले गणेश जी का मंदिर चार सब चारों देवता होंगे। तो वो गाणपत संप्रदाय है, गणपति की संप्रदाय वे गणेश है, ऐसे पांच देवता, ये एक मुख्य बात बताई। अब प्रस्थान त्रय में वैदिक मंत्र है और ब्रह्म सूत्र है और गीता के श्लोक है। ये श्लोक होते हुए भी जैसे उपनिषदों का एक प्रस्थान है दस उपनिषदों का, वैसे ही यही माना जाता है गीता श्लोकों का 700 श्लोकों का एक ग्रंथ। ऐसे वो स्रोत ग्रंथ है विद्वानों का, तो उसमें 4 अध्याय और 16 पाद है, ऐसा वो ब्रह्म सूत्र है उसका वर्णन हुआ है। तो ब्रह्म सूत्र में सूत्रों का वर्णन है, तो वो विद्वानों की चीज है, वो आस्तिकों की चीज है। गीता सबके लिए है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पढ़े लिखे पंडित से पंडित और साधारण से साधारण, उनके लिए भगवद गीता एक प्रस्थान है। तो उनके लिए एक प्रस्थान तो गीता है, परंतु उनके लिए एक ग्रंथ रामायण है। रामायण और गीता ये दो ग्रंथ बहुत व्यापक है, दो ही अवतार है राम और कृष्ण, रामावतार है कृष्णावतार। रामावतार की बात रामायण में है, कृष्णावतार का उपदेश गीता में है। दो ही भाषा, एक संस्कृत और हिंदी, संस्कृत भाषा में भगवद गीता है और हिंदी भाषा में रामायण है। ये दो ग्रंथ साधारण जनता के लिए उद्धार करने वाले हैं, इनका अभ्यास बड़ा सरल है, भाषा बड़ी सरल है, संस्कृत भी गीता का सरल बहुत है, सीधा है, भागवत आदि के तो श्लोक कठिन है, ये संस्कृत बड़ी सरल है। ऐसे आचार्य हुए उन आचार्यों ने जब तीन प्रस्थान पर टीका करी तब उनको आचार्य माना गया और वो संप्रदाय चला है। तो ऐसे भगवत गीता एक प्रस्थान है। अब चौदहवा अध्याय चलता है तो चौदहवा अध्याय में चार श्लोक है। पहले उनमें दो श्लोकों में ज्ञान की महिमा है। तो ज्ञान की महिमा बड़ी बताई। इसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति होती है प्रकृति और पुरुष से, उनका वर्णन है दो श्लोकों में। इसके बाद पांचवें श्लोक में तीनों गुणों का वर्णन है, सत्व रज तम। ये पांचवें से लेकर अठारहवें श्लोक तक ये चौदह श्लोकों में तीनों गुणों का वर्णन है। और अगर ये गुणातीत पुरुष हो जाए, परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वो गुणों को उल्लंघन कर जाते हैं, गुणों से अतीत हो जाते हैं, तो गुणातीत के क्या लक्षण है, एक श्लोक में प्रश्न है, एक ही समय अगर ये दो दो श्लोकों में उनका उत्तर है, उसके लक्षण क्या है, उसके आचरण क्या है, उसका उपाय क्या है, ऐसा वर्णन ये चौदहवें अध्याय का पूरा विषय है। एक बात और ध्यान देने की है, गीता में जो तेरहवा अध्याय है ये एक कठिन अध्याय है, इसका विषय जरा गहरा ज्यादा माना गया है। तो इसमें क्षेत्र क्षेत्र की और प्रकृति और पुरुष का विवेचन हुआ। वो प्रकृति के बताए तीन गुण, उन तीन गुणों का वर्णन विशेष चौदहवें अध्याय में हुआ। तो तीसरे तेरहवें अध्याय में जो गुणों का प्रकरण बचा हुआ है वही बचा हुआ प्रकरण चौदहवें अध्याय में कहा। तो तेरहवें अध्याय का परिशिष्ट चौदहवा अध्याय है। वह प्रकृति पुरुष का विवेक है या गुण त्रय तीनों गुणों से ये स्वयं आत्मा अलग है या गुणों का वर्णन है। तो प्रकृति का वर्णन पहले हुआ, अब प्रकृति के गुणों का वर्णन चौदहवें अध्याय में होगा। इस वास्ते इसका नाम गुण त्रय विभाग योग है। तेरहवें का क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, उसका नाम है भक्ति योग, बारहवा जाएगा। तो ज्ञान का वर्णन किया तो भगवान पहले कहते हैं मैं वो ज्ञान कहूंगा सबसे उत्तम, सब ज्ञान में उत्तम है, श्रेष्ठ है। भूया फिर कहूंगा, फिर कहने का मतलब कि ज्ञान का वर्णन तेरहवें अध्याय में हुआ है, परंतु फिर उसको मैं कहता हूं वह प्रकृति पुरुष का वर्णन हुआ या गुणा और जीव अथवा इनका वर्णन होगा, जिनके जानने से सबके सब मुनि स्थिति को प्राप्त हो गए। इसी ज्ञान का आश्रय लेकर के मेरी सधर्मता को प्राप्त है। जैसे भगवान है ऐसे ही भगवान के भक्त सत्व जीवन मुक्त प्रेमी भी ऐसे ही है, ऐसे हो गए हैं। वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी उनको व्यथा नहीं होती। ये ज्ञान का महत्व है। ये ज्ञान का महत्व दो श्लोकों में कहकर अब बताते हैं जीवात्मा का स्वरूप। तो जीव है ये क्षेत्र क्षेत्र के विभाग हो गए ना, तो क्षेत्र को जानने वाला है जिसमें तेरहवें जमा है यावत संजाय थे किंचित सत्तुम स्थावर जंगम। स्थावर जंगम जो पैदा होते हैं क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से, उसका वर्णन है दो श्लोकों में। तो मम यो निर्महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम धरम, मेरी स्त्री की तरह मेरी प्रकृति है उसमें मैं गर्भ स्थापन करता हूँ, उससे फिर सृष्टि पैदा होती है। वहां बीज प्रदान करने वाला, गर्भ स्थान करने वाला, स्थापन करने वाला मैं हूँ और मेरी प्रकृति है, उससे जीव पैदा होते हैं। तो प्रकृति और पुरुष दोनों से पैदा होते हैं, संपूर्ण जीव पैदा होते हैं। ये तीसरे अध्याय में बताया। और इनमें जो अलग अलग योनियां है, अंडज है, स्वेदज है, सर्जना है, उद्भिज है, ये अलग अलग योनियों में पैदा होते हैं, वे जीव सब होते हैं। तो सर्व योनिषु कांते मूर्ते संबंधिया, संपूर्ण योनियों में स्थावर जंगम सब जितनी मूर्तियां शरीर पैदा होते हैं, तासा ब्रह्मयोनि, ये माता की जगह प्रकृति है और पिता की जगह बीज स्थापन करने वाला मैं हूं। ऐसे वर्णन हुआ है चार श्लोकों का। अब इससे अगर पांच श्लोक पांचवें में गुणों का वर्णन आरंभ करते हैं। चौदहवें अध्याय है, चौदह ही श्लोक है, चौदह गुणों का वर्णन, गुणों का वर्णन में चौदह श्लोक मुख्य। अब सत्वम रजस्तम इति गुणा, तेरहवें अध्याय में आएगा कि विकारांश गुणांश विधि प्रकृति संभवान, विकार और गुण ये प्रकृति से उत्पन्न हुए। तो यह भी यही बताया कि सत्वम रजस्तम इति गुणा, ये नाम बता दिए, वहां तीन गुण बताए, यह नाम बताया कि सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। निबंधन्ति महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम्, ये जो देही है जीवात्मा ये स्वयं अविनाशी है, देह विनाशी है, ये दो चीज है। आप हम जितने बैठे हैं उनमें तो एक देह है, एक देह वाला देही है, ध्यान दिया, शरीर का मालिक देही, जिसको तेरहवें अध्याय में क्षेत्रज्ञ कहा है, और जिसको क्षेत्र कहा उसको यहाँ देह कहते हैं। शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, इसको शरीर के जानने वाला क्षेत्रज्ञ वो जीव है, वो परमात्मा का अंश है, और ये शरीर प्रकृति का अंश है, प्रकृति के अंश को लेकर ये इनके साथ रहता है। तो तीनों गुणों से संपूर्ण सृष्टि पैदा होती है, तो तीनों गुणों से बंधन होता है। इन तीनों गुणों में से किसी गुण में राग होता है तो उसी का गुण के अनुसार जन्म होता है। तो सत्वम रजस्त में इसी गुणा प्रकृति संभव, निबंधन्ति महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम्, ये अविनाशी देही है, नित्य परमात्मा का स्वरूप है, इसको ये बांध देते हैं गुण। तो तीनों के गुणों के बंधने की बात संक्षेप से पांचवें अध्याय में पांचवें श्लोक में कही। अब छह सात आठ तीन श्लोकों में सत्वगुण कैसे बांधता है, रजोगुण कैसे बांधता है, तमोगुण कैसे बांधता है, इसका विवेचन है। तीनों गुण बांधते हैं ये तो पांचवें में कह दिया। अब सत्वगुण तत्र सत्वम निर्मल, निर्मल है सत्वगुण और सबका प्रकाश करने वाला प्रकाशक है। सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन चाहेंगे, ये सत्वगुण सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। तो सत्वगुण का बंधन बनाया बताया छठे श्लोक में। सातवें श्लोक में रजोगुण के वर्णन करते हैं, रजोगुण है और राग स्वरूप है। ज्ञान की आसक्ति कि मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तत्वों का विवेचन करने वाला हूँ, शास्त्रों की बातें खूब अच्छा जानने वाला हूँ, ऐसा होकर उसमें जो अभिमान होता कि मैं जानकार हूँ, ये संग है। मैं जानकार हूँ ये बंधन कम नहीं है। संसार में जैसे मैं धनी हूँ, मैं ऊंचे वर्ण का ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अमुक हूँ, ऐसा अभिमान है, इस अभिमान से कम नहीं है शास्त्रों का अभिमान। तो वो ज्ञान संग है, सुख क्या, उसके विवेचन से, उसके पढ़ने से एक सुख होता है, शास्त्रों के ज्ञान से एक सुख होता है, वो सुख भोग करना और ज्ञान का अभिमान करना, इससे वो बांधते हैं। दिखता है उसको कि मैं जितना जानता हूँ, ये नहीं जानते हैं, बहुत से आदमी नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ। वेदांत क्या है, सांख्य क्या है, योग क्या है, मीमांसा उत्तरमीमांसा क्या है, इन बातों को मैं जानता हूँ। जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, कैसे कैसे है, इन बातों को मैं जानता हूँ। ऐसे जानने का अभिमान है, वो ज्ञान संग है, और उससे जो रस लेना, आनंद लेना, विद्वत्ता में मैं विशेष जानकार हूँ, ये कब जानकार है, ये सुख लेना, ये सुख संग है। तो ज्ञान संग और सुख के संग से ये सत्वगुण बांधता है, ये बंधन बड़ा मजबूत होता है, संसार का बंधन इतना मजबूत नहीं होता। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 52 और 53 दो श्लोक बताए, 52 और 53। 52 के श्लोक में बताया कि ये मोह है, मोह मेरा तेरा धन कपूर कुटुंब आदि की मोह जाल है, उसमें जीव फंसा हुआ है। ये 52वें श्लोक है। 53वें श्लोक बताया कि ये शास्त्र का ज्ञान है, जाल है, ये भी मामूली नहीं है। जैसे कुटुंब का जाल है, धन है, संपत्ति, वैभव, जमीन जायदाद में आदमी फंस जाता है, ऐसे ही सांख्य में दर्शनों को पढ़ करके इस जाल में फंस जाता है, वो जाल बताया 52वें श्लोक में। इन दोनों को मोह को तर जाएगा तब सिद्ध प्रज्ञ होगा, ऐसा भी सुनाया है। तो ये दो जाल है। तो सुख संगेन ज्ञान संगेन, ये है शास्त्र, ये ज्ञान का जाल, इसमें फंस जाता है, अभी बंधन हो जाता है। सुख संगेन बदमाशी, ज्ञान संगेन जाल। वो सत्व है, निर्मल है, प्रकाशक है, ये स्वरूप बताया, सत्व नाम बताया और उसका कार्य बताया और बंधन बताया। ऐसे ही रजोगुण है, वो रागात्मक है, राग नाम आसक्ति, राग नाम रंग का है, जो रंग चढ़ जाता है ना, मेरे धन है, मेरे संपत्ति है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना जानकार हूँ, ये अपने अंतःकरण में रंग चढ़ जाता है। तो ये रंग चढ़ना ये रजोगुण है। ज्ञान का अभिमान, सुख का अभिमान, वो रजोगुण, वो सतोगुण है, और रजोगुण का रंग चढ़ता है, वो रंग कपड़े को रंग देते हैं तो कपड़ा रंगी जाता है, ऐसे रजोगुण है, राग रूप है। तो ये तृष्णा संग समुद्भव, तृष्णा और आसक्ति से पैदा होता है और तृष्णा और आसक्ति को ही बढ़ाने वाला है। जैसे वृक्ष से बीज पैदा होते हैं और बीजों से वृक्ष पैदा होते हैं, वृक्ष से फिर अनेक बीज पैदा होते हैं, ऐसे तृष्णा और आसक्ति का आसक्ति उत्पन्न करने वाला है। ये कर्म संगेन देहिनम बदनाति, ये कर्मों के संग से, मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ, बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं अच्छे अच्छे यज्ञ किए, मैंने इतने इतने अनुष्ठान किए, इतने तीर्थों में गया हूँ, इतनी तपस्या करी है, ऐसे अभिमान से ये रजोगुण बांधता, ये रजोगुण एक बंधन का प्रकार बताया, राग स्वरूप है। और तमस तो अज्ञान समृद्धि, तमोगुण है वो तो अज्ञान से पैदा होता है, मूर्खता है इसमें ज्यादा। मोहनम सर्वदेहिनम, सर्व शरीर मात्र मुझे धारण करने वाले स्थूल सूक्ष्म और स्थावर जंगम जितने प्राणी है, वो मूर्धा आ जाती है, जिसे मोह हो जाता है। मोह का अर्थ विवेक जिसमें नहीं, सत्य क्या है, असत क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, इन बातों का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होकर अभिमान होता है, उसमें सूक्ष्म से बांधता है, और उनमें आसक्ति हो जाती है तो वो रजोगुण बांधता है, रागात्मक। और ये ज्ञान होता नहीं, ये मोह करने वाला प्रमाद, आलस्य और निद्रा, प्रमाद से, आलस्य से, निद्रा से बांधता है। प्रमाद दो तरह का है, एक अक्रिय प्रमाद है, एक सक्रिय प्रमाद है। तो काम न करना, बैठे रहना, बैठे पीछ कर लेंगे, ये काम कर फिर करेंगे, बैठे हैं आराम, बैठे हैं अभी सोते हैं, बैठे आराम करते हैं, ऐसा ये अक्रिय प्रमाद है। और चिलम है, तम्बाकू है, भूखा है, भांग सरस आदि पीना है, खेल तमाशा है, सिनेमा है आदि देखना, इसमें रहना, ये सक्रिय प्रमाद है। प्रमाद वो है जहाँ जहाँ तो ना परमात्मा मिलते, ना पैसे मिलते, समाज और आयु सर्वस समाप्त होती है, उम्र तो खत्म होती है, न परमात्मा मिलते और न संसार का धन भी मिलता, न सांसारिक फायदा है, न पारमार्थिक फायदा है, वो प्रमाद में समय जाता है। प्रमाद को महान नीच बताया है, तमस अज्ञान जम विधि बताया है, तमस तमस तम उन्ना हो, ये नरकस्तम उन्ना हो, तर्गों नरकों का वर्णन, तमोगुण बढ़ गया तो नरकों में है अभारी, वो चाहे कितने ही अच्छा माने, प्रमाद में बैठा है, खेल तमाशा में देखने तमाशे में खेल में बैठा हुआ है, सिनेमा देखता है, वीडियो देखता है, उसमें राजी रहता है, तो वो तमोगुण में महान तामसी पुरुष है। वो निद्रा आलस्य प्रमाद, निद्रा प्रमाद ये हुआ, निद्रा हुई नींद अधिक लेता है, 6 घंटा की जैसे नींद है 4 घंटा 5 घंटा इनसे अधिक नींद लेता है, तो अधिक नींद में आलस में पड़ा रहता है, उस निद्रा से मानते हैं प्रमाद आलस्य निद्रा भी, और आलस्य फिर करेंगे बैठे ऐसे निकम्मे, वो आलस्य होता है। प्रमाद न करने लायक काम करता है और करने लायक काम नहीं करता प्रमाद हुआ है, और आलस्य में बैठा है, ना तो कोई भजन ध्यान करता है, ना घर का धंधा करता है, निकम्मे काम का बैठा है, बैठ गए 5-7 बातें करने लग गए, हुक्का पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, बर्बाद करते हैं समय का, पैसों का, उन उम्र का नाश करते हैं। ये क्या है? ये तमोगुण है, महान नरक है, ये नरकों में फंसे हुए अभी भी नरक है, अगर ही फल भी इसका नरक है, ऐसा तमोगुण है। वो प्रमाद आलस्य और निद्रा से बांधता है। अब बांधता है तो किसी को बांधा जाए तो पहले दो इनको जोड़ करके फिर बांधते हैं, तो ये किसके साथ लगाता है तो बताते हैं बांधने का प्रकार, वो बताते हैं 9वें श्लोक में। बांधता है ये 5वें में कह दिया, सतोगुण रजोगुण बांधने का प्रकार 3 श्लोकों में बता दिया। बंधन कब करता है तो सुखम सत्वम सुखे संजय थी, सतोगुण है सुख में, सुख के साथ बांधता है, ज्ञान के साथ सुख के साथ बांधता है। और रजक कर्मणी बांधता है, रजोगुण है कर्म है, बस काम करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, ये क्रिया में लगाने में, काम में लगाने में ये रजोगुण पहला काम करता है। पहला काम करता है रजोगुण कर्म में, तो सत्वम सुखे संदेह थी, और रजक कर्मणी कर्म में रहा है। ज्ञान मात्रितमा तमोगुण क्या करता है, ज्ञान को ढक लेता है, विवेक को ढक लेता है। अब यार क्या काम करना चाहिए, कैसे बैठे हैं, बालक है तो पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं करते, खेत में काम है करना चाहिए, अभी बैठे हैं पीछे करेंगे, अब यार थोड़ी चिलम पी, थोड़ा चाय पी लो बैठा हूँ घर में, ऐसे बर्बाद करते हैं, ना को रजोगुण काम करते घर का, ना परमात्मा प्राप्ति में चलते, निकम्मे बैठे हैं, बचपन में भी अध्ययन नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, निकम्मे बैठे में राज होता है, तो ये ज्ञान को ढक देता है, विवेक को ढक देता है, तमोगुण समाधि हो जाता है, कुछ होश नहीं, बेहोश कर देता है। प्रमाद संजय तुति, प्रमाद में जीत करता है, प्रमाद में लगा, आलस में, निद्रा में, इसमें ये लगा देता है, लगा देता है, फिर उसी आसक्ति से बन जाता है। इसमें एक बात और समझने की है, सतोगुण सुख और ज्ञान के संग से बांधता है, रजोगुण कर्मों के संग से बांधता है, और तमोगुण में संग करने की जरूरत नहीं है, प्रमाद आलस्य नहीं बांध देता है, संग भी नहीं, इस प्रमाद आया आलस्य या निद्रा आई बन जाता है, उनमें तो आसक्तिकरण से बनता है, क्यों कर्म है वो सात्विक राजस तामस तीनों होते हैं, और तमोगुण तो बांधता है, कोई ये उद्धार नहीं करता, इस बात तमोगुण सबसे नीचा है। कहते एक मानता है गुण तो दूसरों क्या होता भाई, दूसरे गुण सतोगुण लगाता है, सत्तुम सुखे संजति रज कर्मणी और ज्ञान मार्तमा प्रमादे संजय, तो कहते हैं ये कब होता है कि दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है, तीनों गुण संपूर्ण में रहते हैं, सत्तुम रजतमित गुणा निबंधन दिबा हो देही अभ्यम देही वो बांधते, तीनों गुण रहते हैं, दो गुण को दबाकर एक गुण बढ़ता है, ये 10वें में बताया, रजोगुण तमोगुण को दबा करके सतोगुण बढ़ता है, और रजोगुण सतोगुण तमो को बढ़ाकर रजोगुण बढ़ता है, और तमोगुण सतोगुण रजोगुण बढ़ता तमोगुण बढ़ता है, इस तीनों में एक एक गुण बढ़ता है, दो को दबा करके वो बढ़ता है, उसी साथ में बांध देता है, तो दो को दबाकर एक बढ़ता है, ये दसवें श्लोक में बताया। वो दबाता है बांधता है, ये नौ में बताया। बांधने का प्रकार छठे सात आठ में बताया। अब के तो बांधता तो है, पर हमारी क्या पता लगे, हम कैसे पहचाने कि कौन सा गुण बांध रहा है हमारे को। तो सर्व द्वारे सुदेह इसमें प्रकाश हो जाए थे, ज्ञान यदा तदा विद्या विरुद्धम सत्व स्थित। रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सतोगुण बढ़ता है, तो सतोगुण क्या करता है, सर्व द्वारेषु ज्ञानेन्द्रिया कर्मेन्द्रिया मन बुद्धि, ये द्वार है, ये समझने की चीजें, काम करने का दरवाजा है। तो ये सर्वंश प्रकाश होता है, इसमें समझने की शक्ति होती है, जानने की शक्ति होती है, शरीर में स्फूर्ति होती है, उत्साह रहता है, प्रसन्नता रहती है, ऐसे प्रसन्नता रहती है। समझना चाहिए अभी सतोगुण बढ़ा है, रजोगुण को दबाया है। ज्ञानम यदा, तो प्रकाश और ज्ञान दो हुए, एक प्रकाश होता है एक ज्ञान। ज्ञान मानो विवेक और प्रकाश मानो जागृति, मन में जागृति रहती है। आप सत्संग सुनते हो, सुनते सुनते थोड़ी सी नींद आ जाएगी, उसमें देखता है मैं सुनता हूँ पर याद नहीं रहता, तमोगुण बढ़ गया, वो याद नहीं रहने देता, तो प्रकाश विलुप्त हो गया, उसमें प्रकाश नहीं है। सावधानी होती है, सावचेती होती है, सुनने में देखने में करने में स्वच्छता निर्मल थी, वो प्रकाश है। और उनका जो विवेक सत असत का, नित्य अनित्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का, विधि निषेध का, ये ज्ञान है। विवेक ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, और वो है प्रकाश। ये दो बढ़े हुए हो तो समझना चाहिए अभी सतोगुण बढ़ा हुआ है, अभी अंतकरण हमारे सतोगुण बढ़ा है, इसकी ये पहचान है। ऐसे ही लोभ पैदा हो जाए, उन्हें इतना धन लाना है, इतना वो काम करना है, छोरी की शादी करना है, छोरी करना है, वहां जाना है, उतना धन वहां मिल जाता है, ऐसे लोभ पैदा होता है। प्रवृत्ति, चलो भाई चलो बैठे क्या करते हो, चलो भागो उसका काम करो ठीक तरह से, ऐसे रजोगुण है जो वह में लगा देता है, लोभ में लगाता है। लोभ प्रवृत्ति आरम्भ और कर्मों का आरम्भ करता है। ये इतना तो हो गया, इतनी खेती और कर लो, इतनी कल्प पूजा लगा दिया है, इतना एक मशीन और लगा लो, इतना एक और आरंभ कर दो जिससे फिर धन और पैदा हो जाएगा, इस धन के बाद में फिर ऐसे मशीन लगा ऐसे करो इससे धन और पैदा हो जाएगा, ऐसे ये आरंभ है। प्रवृत्ति और आरंभ का भेद है, प्रवृत्ति तो काम में लगना और आरंभ नए नए काम खोलना, ये आरंभ है। तो लोभ प्रवृत्ति आरंभ, कर्म नाम अस्म, कर्म नाम आरंभ, और अस्म अशांति, शांति नहीं होती, बड़ी चिंता लगी है, ये काम बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, खेती में ये बिगड़ हो गया, उस मशीन में ये खराब हो गया, नव मजदूरों ने ये काम नहीं किया, उन्होंने हड़ताल कर दी, क्या करूं, ऐसे बाहर कितने जाल हो जाता है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्म नाम अस्म अशांति हो जाती है। सुनो, रजोगुण पैदा होगा तो ये चीजें पैदा होगी, ये मन में पैदा हो समझना चाहिए रजोगुण बढ़ा हुआ है, ये रजोगुण बढ़ने की बात है। और कर्म में बांधता है फिर बांध देता है। ऐसे अप्रकाश अभी कुछ समझ में नहीं आता, समझ लो बोले ध्यान है क्या पड़ा है, अप्रवृत्ति से प्रवृत्ति करो काम करो, अरे देखते खेल देखते बैठे है, अभी थोड़ी बात चलती है, थोड़ी बीड़ी पीते है, बैठा बैठा से करें काम कर। ये तमोगुण महाराज आते हैं तो अप्रकाश होता है, प्रकृति ठीक तरह से सावचेत नहीं होता, असावधान कर देता है, अप्रकाश हो अप्रवृत्ति से काम करो, कर ले नहीं कर ले, कर हो जाए क्या है, फिर कर लेंगे, कभी फिर कर लेंगे, महान धोखा है ये, जो करना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी फिर करेगा कब, परंतु आता है तमोगुण तो बस करा पीछे करें, तो अप्रकाश और प्रमाद जो बार बता रहे, मोह मूर्ता साफ सा जाती समझता नहीं, तुम चेता नहीं जानते, पर कुरुनंदन तमोगुण बढ़ने पर ऐसे पैदा होता है, तो समझ रहे थे अब तमोगुण बढ़ा है। कैसे ऐसे तमोगुण बढ़ा हुआ, सतोगुण बढ़ा हुआ, रजोगुण बढ़ा हुआ, बात बचाई, ये बढ़कर फिर बांध देते हैं बात कह दी। अब कोई मर जाए मृत्यु के समय यदा सत्वे प्रवृत्ति है तो प्रलयादे मौत मानो सतोगुण के बढ़ने के समय अगर कोई मर जाए सात्विक वृत्तियों में यदा सत्वे प्रवृत्ति प्रलयादे देहधारी प्रलय जाति मानो मृत्यु प्राप्त हो जाए तो उत्तम विदाम लोकांग ऊंचे ऊपर के लोगों को जाता है। सतोगुण के समय मरता है, मृत्यु समय में सात्विक वृत्ति प्रकाश है, ज्ञान है, विवेक है, ऐसे समय मरता है वो ऊर्ध्व लोक को जाता है। और रजसी प्रलयंगत्वा लोभ प्रतिरारंभ आदि इसमें रजोगुणी वृत्तियां बढ़ी है उस समय मरे तो एक कर्म संगी मनुष्यों के साथ जन्म लेता है। और तथा प्रलय तमसी तमोगुण अप्रकाश है, लोभ अप्रकाश है, अप्रवृत्ति है, मोह है, ये में मरे तो कि वो तमोगुण दो नीचे हो जाते हैं। मूल योनियों में सांप है, बिच्छू है, वृक्ष है, गोईरा है आदि के मूल योनियों में इनमें जन्म लेता है। तमोगुण के बढ़ने पर नरक होते हैं और मूल योनि होती है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने पर मनुष्य योनि में आता है, सतोगुण मरने पर ऊर्ध्व लोगों को जाता है। यह ऊर्ध्व और मध्य पता तीन लोग है, तीन लोगों में गति होती है। कहते ये सात्विक है, आपने कहा कि सतोगुण बढ़ता है तो प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, तो किसका फल है? जो सुकृत फल है, जितने पुण्य काम है, पुण्य काम बढ़िया वो है जो निष्काम से होता है। सकाम भाज पुण्य पूरा पुण्य नहीं है, वो लोगों में भटकाएगा खूब अच्छी तरह से। इस वास्ते पवित्र कर्म क्या है कि निष्काम भाव से कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, सबकी सेवा करना, ऐसे जो कर्म है सुकृत वो सात्विक निर्मल फल होता है इसका। रस सुफलम दुखम, रजोगुण का फल क्या होता है? लोभ प्रोजन दुख जलन संताप चिंता मान, लाखों रुपया हो गया तो भी चिंता पर नहीं छोड़ती, नींद नहीं आती, दोनों तरफ हलो हलो हो रहा है, नींद नहीं लगता, वक्त पर रोटी नहीं खा सकता, कपड़े ठीक नहीं पहन सकता, घर वाले बालकों से मिल नहीं सकता, कुटुंबियों के साथ काम मार धन हाय धन हाय धन लगा है, ये रजोगुण में ज्यादा लग जाने से ऐसी दशा होती है। तो कर्म सुकृत और रस सुफलम दुखम और अज्ञानम तमसा फलम, तमोगुण का फल अज्ञान होता है, मूड होता, जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, ना सत्संग समझता है, ना घर का धंधा भी समझता है, काम किस समय में कौन कौन करना है, कैसे करना है, इसका भी ख्याल नहीं है, समय बर्बाद कर देता है, ये इसका तमोगुण का फल है। अब कहते हैं ये सतोगुण बढ़ा, रजोगुण बढ़ा, तमोगुण बढ़ा आपने बताया, तो जब ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, सतोगुण बढ़ा, लोभ प्रवृत्ति आरम्भ होता है, रजोगुण बढ़ा, और मोह बढ़ा तो तमोगुण बढ़ा, ये कैसे माना? तो कहते हैं कि ये सत्वा संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान होता है तो ज्ञान को समझा मूल में सतोगुण है, सत्वा संजायते ज्ञानम, रजोगुण से लोभ पैदा होता है, लोभ आदि बढ़े तो समझो कि मूल में रजोगुण है। बड़ी तो वृत्तियां लोभ प्रवृत्ति आरम्भ कर्म नाम असमस प्रिया वृत्तियां बढ़ी, और कहते हैं रजोगुण बढ़ा, रजोगुण क्या कि रजोगुण से चीज पैदा होती है, इन वृत्तियों से पहचान होती है कि मूल में रजोगुण बढ़ा हुआ है, ऐसे प्रकाश ज्ञान होता है मूल में सतोगुण बढ़ा हुआ है। कर्म सुकृत सत्वा समझाए थे ज्ञानम, रजो लोभ ये उसे, और प्रमाद मोह, प्रमाद मोह बढ़े हुए तो ये तमोगुण से जो प्रमाद है, आलस है, अधिक निद्रा है, इसमें बढ़ा तो समानता है तमोगुण है, तो ये गुण तीन रहते हैं उनसे ये वृत्तियां बढ़ती है, वृत्तियां गुणों की पहचान होती है, ये बात रहती है। अब ये तीनों गुणों के बांधने का प्रकार, लगाने का प्रकार, दो को दबा कर एक बढ़ने का प्रकार, और एक एक गुण के बढ़ने का प्रकार छह सात आठ में, और नौ दो श्लोकों में उनकी गतियों का वर्णन और कर्मों का सात में वर्णन, उनके मूल में सतुगुण बढ़ा इसका वर्णन हुआ। अब जो विशेष उम्र में ज्यादा जिसके सतुगुण रहता है हरदम, बहुत सतुगुण की वृत्तियां ज्यादा रहती है, किसी के रजोगुण की वृत्तियां मुख्य रहती है, किसी के तमोगुण की वृत्तियां मुख्य रहती है, वो सत्व स्थित होता है। वो तो यदा तदा है, जब सतोगुण बढ़ा तब मर जा, वो गुण है रजोगुण जब बढ़ा उससे मरा, तमोगुण बढ़ा उस समय मरा, उसी गति बताई। अब सतोगुण में स्थित रहने वालों में क्या गति होती है, रजोगुण में स्थित रहने वाले, तमोगुण में स्थित रहने वाले क्या गति है, वो उसे बताते हैं। ऊर्ध्व गति सत्वस्था, सतोगुण में स्थित रहने वाले ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा मनुष्य ही में आते हैं। और जघन्य गुण वृत्ति, जघन्य गुण निंदनीय गुण जो है तमोगुण, उसमें वृत्ति रहने वाले अधोगत से जामता। अधोगति के दो भेद हैं, एक नरकों में जाना और एक 84 लाख जोनी में जाना, ये अधोगति है। पशु पक्षी आदि बनना, वृक्ष बनना, ये अजम योनि है। और नरकों के कुंड है, लाला पक्ष है, सार में अजम है, दंत सुख है, कुंभी पाक है, लाला पक्ष है, ये कुंभ, ये स्थान विशेष नरक, स्थान विशेष नरक और योनि विशेष नरक है। दो नरकों में जाते तमोगुण में स्थित होने वाले गुणे व्यस्त हो अधोगत संत तामसा। अब इसे गुणों से अतीत कैसे हो भाई, ये 18 श्लोकों में बता दिया गुणों की प्रकृति बता दी, 5 में से 18 में तक 14 श्लोक हो गए, 14 अध्याय, 14 गुणों का, 14 गुणों का, 3 गुणों का वर्णन होगा। अब इन गुणों से ऊपर कैसे उठ, गुण से ऊंचे उठ जाए, तत्व को प्राप्त करते, मुक्ति प्राप्त कर ले, तो उसका बात बताते हैं। नान्यं गुणे व्यकर्तारम यदा दृष्टान उपस्थिति, पहले आरंभ में जो ज्ञान की महिमा बताई वो ज्ञान मैं तुम्हारे को कहूंगा, तो वो ज्ञान कहते हैं। अब तीनों गुणों से ऊंचा उठने के लिए नान्यं गुणे व्यकर्तारम, ये जो करना है ना, सात्विक भी होता राजसिक तामसिक होता, गुणों के सिवाय कर्ता नहीं है, आत्मा स्वयं अकर्ता है, ऐसा अनुभव करने से गुणातीत होता है। अपने में कर्तृत्व तो अभिमान न होने से, कर्तृत्व तो अभिमान रहता है तो अभिमान सात्विक राजसिक तामस तीनों होता है, तीन तरह का अभिमान, उनकी गति उन गुणों के अनुसार होती है। तो गुणों के सिवाय जब दृष्ट आप देखता है, गुणों के सिवाय अन्य कर्ता नहीं है, कर्ता सब गुणों से प्रगति से उत्पन्न होने वाले गुण सब काम कर रहे हैं। गुणे व्यस्त परम व्यस्त, गुणों से मेरा स्वरूप अलग है, मेरा स्वरूप प्रकाश रूप से है, आधार रूप से है, आश्रय रूप से है। जैसे संसार सब दिखता है अभी, तो सूर्य के प्रकाश से दिखता है, ऐसे सतोगुण से सब चीज दिखती है। वो सतोगुण है जिसका मूल में क्या है, ज्ञान है, वो प्रकाश रूप चेतन आत्मा है। गुणे व्यस्त परम व्यक्ति, गुणों से परिजानता उभय भाव को प्राप्त हो जाता है। सात गुणान एतान अतीत, तीन देही देश समुदान, देह से उत्पन्न होने वाले तीनों गुणों को अतीत अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु जरा दुख से रहित होकर के अमृतम अश्नुते, अमरता की प्राप्ति हो जाती, फिर वो अमर हो जाता। कारण गुण सोंगो सदसद योनि जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में कारण गुणों का संग है, तो बढ़ने पर बता दिया 13, 14, 15 में, और यहाँ बता दिया ये स्थित रहने वाले गुणों का, ये ऊर्ध्व गति बताई, और ये गुणातीत के लक्षण बता दिए कि ऐसे तीनों को गुणातीत हो जाता है, वो अमृत महसूस है, अमरता को प्राप्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। यहाँ तक ये गुणों का विशेषता से प्रारंभ हुआ, 2 श्लोकों में गुणातीत की बात। अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि महाराज कई लिंग तीन गुणान एतान अतीतो प्रभु भोसी प्रभु प्रभु, इन तीनों गुणों को जो तर जाता है उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसकी क्या पहचान होती है कि तीनों गुणों को तर गया, और उसके आचरण कैसे होते हैं, व्यवहार कैसे होता है, और गुणों के उपाय चलने का उपाय क्या है, तीन प्रश्न किए। गुणातीत के लक्षण कैसे होते हैं, उसका आचरण कैसे होता है, और तीनों गुणों से तरने का उपाय क्या है, ये तीन प्रश्न किए भगवान अर्जुन ने 21वें श्लोक में। अब 6 श्लोकों में एक एक प्रश्न का उत्तर दो दो श्लोकों में देते हैं। प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में पांडव गुणातीत पुरुष होता है, उसमें प्रकाश ये सतोगुण की वृत्ति, प्रवृत्ति ये रजोगुण की वृत्ति, मोह तमोगुण की वृत्ति, ये आ जाए तो उनमें कोई राग द्वेष नहीं होता। गुणातीत से उसमें राग द्वेष हर्ष शोक राजीव नाराजी नहीं होते। सतोगुण की वृत्ति आ गई, तमोगुण की आ गई, रजोगुण की आ गई, उसमें पूरा सतोगुण नहीं आता, प्रकाश आता जाता रहता है, ज्ञान आता जाता नहीं रहता है, प्रवृत्ति आता जाती रहती है, लोभ आदि नहीं होते उसमें, होते नहीं, कभी काम करता है कभी नहीं करता है, ऐसा गुणातीत में भी होता है। तो ही मौज चला गया तो ही मौज, घर में कोई मर गया तो ही मौज, कोई जन्म गया तो ही मौज, उसके आचरणों में हर्ष शोक नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता, ऐसी समता से आचरण होता है, सब दुख सुख। क्यों? स्वस्थ है वो स्व में स्थित है, वो प्रकृति में स्थित नहीं है। पुरुष प्रकृति से ही भूंगते, प्रकृति में स्थित ही पुरुष भोगता बनता है, अस्वस्थ होते भोगता नहीं होता, सुख दुख में समान, अब भोगता है ही नहीं, अब सुख का असर किसको, जो भोगता हो तो भोगता नहीं रहता, वो प्रकाशक रहता है। जैसे संसार में कोई काम कैसे करता है, सूर्य को कोई असर नहीं होता, कोई अच्छा काम करता है कोई मंदा करता है प्रकाश में, पर सूर्य में किसी में कोई सावल नहीं, ऐसे गुणातीत का आचरण होता है, सब तरह के न्याय युक्त शास्त्र की सम्मति के अनुसार उन आचरणों में भी तटस्थ रहता है, लिप्त नहीं होता। समदोष आत्म का जीवन दोष ढेला, अश्म पत्थर और सोना, इनमें समान बुद्धि होती है। मानो सोना मिल गया तो कोई बड़ी भारी चीज मिल गई, पत्थर मिल गया तो नहीं मिला, ढीला मिल गया तो कोई फर्क नहीं रहता, समता रहती। प्रिय अप्रिय दोनों आ जाए, व्यक्ति भी प्रिय अप्रिय होता है, वस्तु भी प्रिय अप्रिय होती है, क्रिया भी प्रिय अप्रिय होती है, विवेचन भी प्रिय अप्रिय होता है, तो तुल्य प्रिय अप्रिय तुल्य हो जाए तो कोई उसका ही असर नहीं होता, स्तुति हो जाए प्रश्न वाह वाह महाराज बड़े अच्छे बड़े, कोई खुशी नहीं आती कि बड़ा ठग आदमी है, बहुत सुंदर है, ऐसे निंदा करे तिरस्कार करे तो अपनी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुल निंदा सुनते मान कर ले कोई आदो सा बैठो माला पहन दे चंदन चुदा दे आदर कर दिया मान कर दिया, उसने निकल निकल यहाँ से कहाँ आ गया वहां जावा, दोनों हंसता है मस्ती से, कोई मान करे अपमान करे मान अपमान तुल्य मित्रधारी पक्ष हो, मित्रधारी का पक्ष हो तो मैं कुतुल्य है, मैं कोई पक्षपात नहीं है। और सर्व आरंभ बचाए कोई आरंभ नहीं, वो जो लोभा प्रवृत्ति आरंभ कर्म नाम बताया, उन आरंभ का कोई त्याग नहीं है, क्या लेना आपने क्या करना, वो गुणातीत कहलाता है। ये गुणातीत के आचरण बताए कि मास्टर कथन चेतन, अब कहते हैं उन गुणों को अतीत कैसे हो, तो भगवान के गुणातीत होना हो तो मान तो अव्यभिचारी ने भक्ति योग से अनन्य भक्ति करे, मैं अव्यभिचारी व्यभिचारी नहीं, कभी किसी उपास मैंने एक भगवान में लग जाए, अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरा भजन करता है, वो गुणों को अतीत करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है, ये अनन्य भक्ति है, उपाय है गुणातीत होने का। क्यों ऐसा है कि ब्रह्म ही प्रतिष्ठा, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ, मैं भी कोई ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म मेरी अधीन मेरी आश्रित है, मेरी है अमृत से अमृत अमृत है अविनाशी परमात्मा है, उसका अधिष्ठान मैं हूँ, शाश्वत धर्म का नृत धर्म का सनातन धर्म का एकांतिक सुख जैसे बड़ लोग कोई सुख नहीं सुख का आश्रय मैं हूँ, तो फिर मेरे को प्राप्त हो जाता है गुणातीत है, तो वो प्राप्त होने का उपाय बसाया अनन्य भक्ति से उसकी प्राप्ति हो जाती है। ऐसे इस तीनों गुणों के विभाग का वर्णन हुआ 14वां अध्याय। पहले दो श्लोक ज्ञान के हैं, दो श्लोक फिर प्रकृति पुरुष से संसार उत्पत्ति बताया, पांचवें श्लोक में तीनों गुण कैसे कैसे बांधते हैं तीनों बंधन की बात बताई, छठे सात आठ में सतोगुण रजोगुण तमोगुण बंधन की बात बताई, और वो किस किस में लगा देता है नौवें में बताई, दो को दबा कर एक गुण बढ़ता है दसवें में बता दी, 11-12 में इन गुणों के बढ़ने के लक्षण बता दिए 13-13 में, और उन बढ़े हुए मर जाए तो गण बता दी 14-15 में, 16 में सात्विक राजतामस कर्म का फल बता दिया, और 17 में वो किस किस में कैसे कैसे करता है क्या क्या मूल में होता है प्रतियों के द्वारा वो बता दिया, और 20 में बता दिया उनको अतिक्रमण करके परमात्मा को प्राप्ति कर रहे, ऐसी बात बता दी। अब गुणातीत के लक्षण पूछ लिए, तो उनमें लक्षण कैसे होते हैं, आचरण कैसा होता है और उपाय क्या है, ये 6 श्लोकों में बता दिया, ये 14वां अध्याय हो गया। अब गीता जिनको याद है उन भाइयों को बहनों को लड़कियों को चाहिए कि उनको याद कर ले, इनका विचार करें, आपस में बैठकर चर्चा करें, जिससे बहुत बढ़िया काम हो जाता है। भाई लोग आपस में बैठ करके इन अध्याय को चर्चा करें तो ये ठीक मनन हो जाता है, ये 14वां अध्याय हो गया। नारायण 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 नारायण। तो कल मैंने बताया भी 3 उपाय है, एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है, एक भक्ति योग है। उसमें कल मैंने बताया भक्ति योग बड़ा सुलभ है, भक्ति योग में हमारे जैसे संबंध है वैसे संबंध मान ले भगवान के साथ, कोई भगवान को माँ मानता है, एक संत थे वो भगवान को कहते मेरी माँ है, भगवान तो मेरी माँ है। एक शहर में गए, धनी आदमी ले गया भिक्षा कर रहे भोजन करो महाराज, फिर मोटर में लेकर के बगीचे में ले गया, ये हमारा बगीचा है यहाँ आराम करो, शाम की बगीचा अपने घूमने को चलेंगे, महाराज वहां सो गए, नौकर में जाकर के जल भर करके कुंजा रख दिया जल का ठंडा, प्यास लगे पीले ने महाराज, बाबा जी सोए हुए थे, सोए हुए तो लगी प्यास, भोजन करके आए सोए नहीं लगी प्यास, लगी कि जल पिए, कैसे जल तो कोई माँ पिला पीते बच्चा तो नहीं पीता, मैं तो बच्चा हूँ, माँ आएगी पिलाएगी तो पियेंगे, ये तो सोए हैं अपने मौज से। इतना नौकर आया कि महाराज जल पियो, हाँ है माँ आ गई, माँ आ गई, तो माँ आ गई जल पिला पी, आप ही नहीं जल कैसे पी, बच्चा आप ही थोड़ी पीता है, माँ पिलाती है, अब भोजन दे तो माँ देती है, जल पिलाए तो माँ ने पिलाया, माँ भगवान मेरी माँ है, अब कोई नौकर रूप धारण करे सेठ का रूप धारण कर दे भगवान की मर्जी से रूप धारण करे है तो मेरी माँ, ये रूप आती है सच। इसे वो सेठ आया कि महाराज चलो अपने घूमने को चले, तो पैर पास में ही नहर चलती थी, माँ ही मानते भगवान को, कोई दे देता कहते माँ ने दे दिया, ये मान लिया ये मान लिया, और माँ के लिए वो चीज बढ़िया लगती है, तो कोई भगवान को माँ मान लेता है, कोई बाप मान लेता है, कल बताया ना आपको सीता जी को बहन मान लिया, प्रयागराज जी महाराज सीता जी को बहन मानते थे, हमारी बड़ी बहन है सीता जी, सुनिए बहन गोदी में रहता हूँ मैं, हमारी बहन है बड़ी, कसार मगध लाकर दिया, हमारी माँ की बड़ी बेटी है, मैं छोटा बेटा हूँ, मेरी बहन है, तो सीता जी वैसे ही पालन करती है, वैसे ही गोदी में रहती, प्यार करती है, जैसे बड़ी बहन प्यार करे ऐसे बहन प्यार करती है, राम जी भी उसी बात को मान गए, तो भगवान को ये यथा मामत्र प्रजन थे, ऐसे कोई माँ मान ले कोई बहन मान ले, कोई भगवान को मित्र मानता है, समझी खेलूंगा तुम्हारे साथ, एक बच्चा देखा मैंने ठाकुर जी कृष्ण भगवान की मूर्ति अच्छा आजा 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 मेरे साथ खेल दे, आजा आजा खेलने गए अपने अभी। ऐसे गोविंद हुआ एक भगत, भगवान का गोविंद एक भगत था, वहां रहता था गिरिराज में, गोवर्धन पर्वत है वहां रहता था। भगवान को अपना मित्र मानता, तो मित्र मानता तो ठाकुर जी महाराज उसके प्रेम में भस्म हो गए। एक दिन ठाकुर जी गोवर्धन नाथ की पूजा हो रही थी, गिरिराज की पूजा हो रही थी, श्रीनाथ जी महाराज अभी नाथद्वार में गए हुए, वहां गिरिराज में रहते थे, तो श्रीनाथ जी की पूजा जहां जंगल नगारे बन रहे थे, चला गया वहां। वहां देखा एक छोटा सा छोकरा खड़ा है, अपने को तो मूर्ति दिखती, मूर्ति नहीं दी उनको, छोकरा खड़ा, ये सब उसका कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, आरसी कर रहे हैं। ये छोरा आ जाए तो अपन दोनों खेलेंगे खूब मोल से, पर तो कैसे आओ ये? अब मन में आ खेलने आ जाओ, तुम आ जाओ खेलने आ जाओ, खेलेंगे खेलेंगे बात करे मन में। आरती होगी, भोग लगाया, कपाट बंद कर दिए, पर जी बुझा बुझाई और चले गए। रात्रि का समय कुमार की चीर से देखता है गोपाल, आजा आजा हम खेलेंगे बाहर, आजा अपने खेलेंगे। उसको ये गुल्ली डंडे का खेल है, इल्ली बिल्ली तिल्ली का, ये खेल बहुत प्यारा लगता है, गोविंद का बच्चा था ना, तो कहा गोपाल आओ, गोविंद आओ, अब तुम खेलेंगे गुल्ली डंडा खेलेंगे। वो समझे गुल्ली डंडा खेल तो कहने पर बच्चा कैसे रह सकता है, फिर तो आवेगा ही, बुला लिया तो तू चल, वो चला साथ में आगे छोटे से, क्या हो अपने खेलें, देखो आ जाओ तुम खेलेंगे, तुम्हारे को मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, मैं खेलेंगे साथ में। अब साथ में खेलने लगे सब,